लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे अलग तरह से सक्षम लोगों के लिए याचना करते हैं, ताकि उनकी व्यथाओं पर समाज अपना ध्यान केंद्रित करे और समावेशी कार्यक्रमों द्वारा उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व प्रदान करे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व संत पापा फ्रांसिस का दिया गया संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने आगमन के प्रथम रविवार को संत मार्था के प्रार्थनालय से देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। उन्होंने विश्व के विभिन्न देशों से आए हुए विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
cari fratelli e sorelle, buongiorno. Anche oggi io non potrò leggere tutto.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। संत पापा ने कहा कि मेरे स्वास्थ्य में अब भी सुधार हो रहा है, अतः मैं पूरी तरह से अपने संदेश को नहीं पढ़ सकता हूँ। इसे आज भी मान्यवर पाउलो बेडा आपके लिए पढ़कर सुनाएंगे।
Oggi, prima domenica di avvento, nel breve Vangelo che la liturgia ci propone, Gesù ci rivolge per ben tre volte un'esortazione semplice e diretta: vegliate.
आज आगमन के प्रथम रविवार धर्म विधि के छोटे सुसमाचार में यीशु अपने संबोधन में तीन बार हमें सीधे तौर पर जागते रहो कहते हैं। अतः आज की विषय वस्तु है जागते रहना। हम इसे कैसे समझ सकते हैं? कभी कभी इस गुण को सजा पाने के भय से प्रेरित एक मनोभाव के रूप में हम पाते हैं, मानो आकाश की ऊंचाई से कोई उल्का पिंड हमारे ऊपर गिरने वाला हो, और यदि हम उसे सही समय पर दूर नहीं करते तो वह हमारे लिए विनाश का कारण बनेगा। लेकिन इसका अर्थ निश्चित रूप से यह नहीं है। यीशु एक दृष्टांत के माध्यम इसे हमारे लिए स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि एक स्वामी अपने सेवकों के पास लौटकर आएगा जो उनकी राह देख रहे होते हैं। धर्म ग्रंथ के अनुसार सेवक अपने स्वामी का विश्वासी भजन है, जिसके संग उसका अच्छा और एक प्रेमपूर्ण संबंध बना हुआ है। हम इसे मूसा से संबंधित एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जिसे ईश्वर के सेवक स्वरूप परिभाषित किया जाता है। वहीं हम माता मरियम को भी अपने में यह कहते हुए सुनते हैं, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ। अतः सेवक का जागते रहना भय से प्रेरित नहीं है, लेकिन यह चाह से उत्पन्न होता है, जहाँ वह अपने स्वामी के आने पर उनसे मिलने की प्रतीक्षा करता है। वे उनके आने की राह देखते हैं, क्योंकि वे उससे प्रेम करते हैं। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आने पर वे स्वागत किए जाएं और अपने घर को साफ सुथरा पाएं। वे उन्हें पुनः पाकर खुश होते हैं, यहाँ तक कि उनके लौटने पर एक बड़े परिवार के रूप में महोत्सव स्वरूप मनाने की सोचते हैं, जिसका अंग वे अपने को समझते हैं।
E con questa attesa carica di affetto che vogliamo anche noi prepararci ad accogliere Gesù.
हम सबों के लिए यह प्रेम भरी आशा है, जहाँ हम ईश्वर के पास आने की तैयारी करते हैं, जिसे हम कुछ सप्ताहों के बाद ख्रिस्त जयंती के रूप में मनाएंगे। हम अंतिम समय की तैयारी करते हैं, जहां वे अपनी महिमा में लौटकर आएंगे। वे रोज दिन हमारे लिए यूखरिस्तीय बलिदान में मिलने आते हैं, जहां हम उनके वचनों को सुनते, उन्हें विशेष रूप से जरूरत में पड़े अपने भाई बहनों में पाते हैं। अतः इन सप्ताहों में विशेष रूप से हम सावधानी पूर्वक अपने हृदय को तैयार करें, जिससे यह उनके स्वागत हेतु साफ सुथरा रहे। वास्तव में जागते रहने का अर्थ अपने हृदय को तैयार रखना है। यह हमारे लिए एक संतरी के मनोभाव को व्यक्त करता है, जो रात के थकान होने पर भी अपने को निंद्रा के प्रलोभन में पड़ने नहीं देता, बल्कि जागते रहता और भोर होने की प्रतीक्षा करता है। यीशु हमारी ज्योति हैं और यह हमारे लिए अति सुंदर बात है कि हम उनके स्वागत हेतु अपने हृदय को प्रार्थना और करुणामय कार्यों के माध्यम तैयार करते हैं। ये दो तैयारियां उन्हें हमारे संग रहने में सहज बनाती हैं। इस संदर्भ में एक प्रार्थनामय व्यक्ति टॉर्स के संत मार्टिन, जिन्होंने अपने परिधान के आधे भाग को एक भिखारी के लिए दे दिया, कहते हैं कि मैंने सपने में यीशु को उस परिधान को पहने देखा।
Ecco un bel programma per l'avvento.
यह हमारे लिए ख्रिस्त जयंती का एक सुंदर कार्यक्रम है। यीशु ख्रिस्त को अपने भाई बहनों में मिलना, जिन्हें हमारी जरूरत है, जिनमें हम यीशु को अपने लिए पाते हैं, जिन्हें हम अपना समय देते, सुनते और ठोस रूप में सहायता करते हैं, यीशु ख्रिस्त उनके द्वारा हमारे पास आते हैं। प्रिय भाइयों, हमारे लिए यह अच्छा है कि हम अपने में पूछें कि हम कैसे अपने हृदय को यीशु का स्वागत करने हेतु तैयार करते हैं। हम उनकी क्षमा, उनके वचनों, उनके संग मेज में और प्रार्थना हेतु समय निकालते हुए जरूरतमंदों के पास जाते और ऐसा करते हैं। हम व्यर्थ की चीजों की चिंता किए बिना और शिकायत किए बिना अपने में उनकी आशा को जागृत करें, लेकिन हम अपने हृदय को सचेत रखें, अर्थात उनके प्रति रुचि रखते हुए जागरूकता और अपनी तैयारी में उनसे मिलने हेतु अधीर रहें। माता मरियम, जो प्रतीक्षा की नारी हैं, हमें अपने बेटे का स्वागत करने में हमारी मदद करें जो हमारे पास आते हैं। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया और उन्हें अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा फ्रांसिस ने पुनः सभों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि इसराइल और फिलिस्तीन की स्थिति गंभीर है। यह दुख की बात है कि युद्ध विराम की संधि टूट गई है। इसका अर्थ मृत्यु, विनाश और मानवीय त्रासदी है। बहुत से बंधकों को छोड़ा गया है, लेकिन अब भी गाजा में बहुत से लोग बंदी हैं। हम उनके बारे में सोचें, उनके परिवारों को जो आशा में बने रहते हुए अपने प्रिय जनों को पुनः आलिंगन करने की सोचते हैं। गाजा की स्थिति बहुत ही तकलीफ भरी है। हम वहाँ बुनियादी आवश्यकताओं की कमी को पाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वे जो इसमें संलग्न हैं, वे एक नए युद्ध विराम की संधि हेतु सहमत हो सकें और हथियारों के बदले शांति स्थापना के मार्ग में आगे बढ़ने का साहस करें। संत पापा ने फिलीपींस के गिरजाघर में हुए एक बम विस्फोट के शिकार हुए लोगों की याद की। उन्होंने कहा कि मैं मिडनाओं के लोगों के करीब हूँ, जिन्हें पहले ही बहुत दुख का सामना करना पड़ा है। मैं दुबई में हो रहे COP28 के कार्यों और विचार मंथनों में सहभागी हो रहा हूँ। मैं निकटता से उनका अनुसरण कर रहा हूँ। मैं ठोस राजनीतिक परिवर्तनों के साथ जलवायु परिवर्तन की प्रतिक्रिया हेतु अपनी अपील को दोहराता हूँ। आइए हम विशिष्टतावाद और राष्ट्रवाद, अतीत की मानसिकता से बाहर निकलते हुए एक सामान्य दृष्टिकोण अपनाएं। हम एक आवश्यक वैश्विक रूपांतरण के लिए बिना देर के हर संभव प्रयास करें। संत पापा ने अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की याद करते हुए कहा कि हम उन्हें अपने समाज का एक पूर्ण अंग बनने में मदद करें, जिससे वे अपने में पूर्ण मानव होने का अनुभव कर सकें। परिवारों में, पल्लियों, विद्यालयों, कार्यस्थलों और खेलकूद में हम हर व्यक्ति के गुणों और योग्यताओं का सम्मान करना सीखें, जिससे कोई भी अपने में परित्यक्त होने का अनुभव ना करे। इसके उपरांत संत पापा ने विश्व के विभिन्न स्थानों से आए हुए तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया, विशेष रूप से पोलैंड के लोगों का, जो हाल ही में धन्य घोषित किए गए उल्मा शहीद परिवार के सम्मान में रोम में आयोजित कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। उन्होंने फ्लोरेंस, सिएना, ब्रिंदिसी, कोसेना और आदरानो पल्लियों से आए हुए तीर्थ यात्रियों का अभिवादन किया। अंत में संत पापा फ्रांसिस ने सबों को शुभ रविवार ये मंगल कामनाएं देते हुए एक अच्छे आगमन काल की यात्रा के लिए शुभ कामनाएं अर्पित की और अपने लिए प्रार्थना का निवेदन करते हुए सबों से विदा ली।
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me.
Le chal meri aatma ko tu kaisa kathin raasta hai
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। हम कैथोलिक पंचांग के आगमन काल में क्रिस्ट जयंती के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। आगमन काल के पहले सप्ताह के पहले दिन सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संत पापा फ्रांसिस ने ट्वीट कर ख्रिस्तियों को शांतिपूर्ण जीवन हेतु शांति के राजकुमार से प्रार्थना करने हेतु प्रेरित किया। संत पापा ने संदेश में लिखा, हमने आशा से भरे हुए आगमन में प्रवेश किया है। हम शांति के राजकुमार से तहे दिल से प्रार्थना करते हैं कि वे घायल दिलों और युद्धों तथा हर प्रकार के संकटों से पीड़ित राष्ट्र को सांत्वना प्रदान करें, ताकि सभी एक सम्मानजनक और शांतिपूर्ण जीवन जी सकें। और संत पापा फ्रांसिस की उपस्थिति में 9 कार्डिनलों की परिषद की बैठक आज वाटिकन में शुरू हुई। जैसा कि संत पापा फ्रांसिस ने पिछले 30 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय धर्मशास्त्र आयोग से मुलाकात के दौरान कहा था, बैठक के दौरान कलीसिया की महिमा आयाम पर एक चिंतन होगा। संत पापा ने कहा था कि कलीसिया महिला है, और यह समझाते हुए कि हमारे सबसे बड़े पापों में से एक कलीसिया को पुरुष बनाना है। हालांकि संत पापा ने महिला पुरोहिताई के संदर्भ में कहा कि हम इसे आयोग के स्तर पर हल नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा, इसे रहस्यमय तरीके से वास्तविक तरीके से हल किया जा सकता है। उन्होंने बाल्थासेरियन मूल के पेट्रिन सिद्धांत और मैरियन सिद्धांत की चर्चा की, जिसे वे अपने को आलोकित पाते हैं। आप इसके बारे में बहस कर सकते हैं, जिसमें दो सिद्धांत मौजूद हैं। मैरियन पेट्रिन से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कलीसिया दुल्हन के रूप में है, कलीसिया महिला के रूप में है, जो पुरुषत्व को स्थापित नहीं करती है। इसलिए उन्होंने कलीसिया को पुरुष विहीन करने की आवश्यकता को दोहराया। उधर रविवार देवदूत प्रार्थना का पाठ करने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने फिलीपींस में पवित्र मिसा के दौरान कैथोलिक विश्वासियों पर हुए बम हमले के पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। मिदानाओ स्टेट यूनिवर्सिटी में एक व्यायामशाला पर हुए हमले में 4 लोगों की मौत हुई और 42 घायल हो गए, जहां पवित्र मिसा समारोह का अनुष्ठान किया जा रहा था। मिंदानाओ के धर्माध्यक्ष एडविन डे ला पेना वाई एंगोट को संबोधित एक टेलीग्राम में संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि उन्हें बमबारी के कारण हुई चोटों और जान माल के नुकसान के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ है। वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेत्रो पारोलिन द्वारा हस्ताक्षरित संदेश में कहा गया है कि संत पापा फ्रांसिस ने उनसे इस त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों को अपनी आध्यात्मिक निकटता व्यक्त करने के लिए कहा। टेलीग्राम में आगे कहा गया, सर्वशक्तिमान ईश्वर की प्रेम पूर्ण दया से मरने वालों की आत्मा को अनंत शांति मिले। संत पापा घायलों के लिए उपचार और शोक संतप्त परिवारों के लिए सांत्वना के दिव्य उपहार की प्रार्थना की। और संत पापा फ्रांसिस ने दुबई में COP28 के दौरान फेथ पवेलियन के उद्घाटन के लिए एक वीडियो संदेश भेजा और ऐसे गठबंधनों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जो सृष्टि और शांति की देखभाल को बढ़ावा देते हैं। दुबई में COP28 आस्था मंडप के उद्घाटन के दौरान रविवार सुबह प्रसारित संत पापा के संदेश को वाटिकन राज्य सचिव पिएत्रो पारोलिन को सौंपा गया। अपने वीडियो संदेश में संत पापा ने COP28 में उपस्थित न होने पर खेद व्यक्त किया और आस्था मंडप के उद्घाटन पर जोर दिया, क्योंकि यह पहली बार है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के भीतर एक धार्मिक मंडप स्थापित किया गया है। संत पापा ने कहा, यह मंडप एक साथ काम करने की इच्छा को प्रमाणित करता है। आज दुनिया को ऐसे गठबंधनों की जरूरत है जो किसी के खिलाफ नहीं बल्कि सभी के पक्ष में हो। यह जरूरी है कि धर्म समन्वयवाद के जाल में फंसे बिना एक अच्छा उदाहरण पेश करें, किसी के अपने या किसी एक पार्टी के हितों के लिए नहीं बल्कि हमारी दुनिया के हितों के लिए साथ मिलकर काम करना। उन्होंने कहा, वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण विषय शांति और जलवायु है। इस प्रकार संत पापा फ्रांसिस ने यह दिखाने के लिए कि परिवर्तन संभव है सभी धार्मिक प्रतिनिधियों को एक उदाहरण बनने और टिकाऊ एवं सम्मानजनक जीवन शैली का साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, आइए हम ईमानदारी के साथ राष्ट्रों के नेताओं से हमारे आम घर को संरक्षित करने का आग्रह करें, गरीबों और हमारे बीच के सबसे कमजोर लोगों की पुकारें, जिनकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचती हैं। अंत में संत पापा ने सभी को सृष्टि की रक्षा करने और हमारे आम घर की रक्षा करने, हमेशा शांति से रहने की कोशिश करने के लिए आमंत्रित किया। और आस्था मंडप के उद्घाटन के हिस्से के रूप में संत पापा फ्रांसिस ने कई धर्मों के धार्मिक नेताओं और प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक एकीकृत आस्था घोषणा पर भी हस्ताक्षर किया। यह घोषणा विश्व स्तर पर जलवायु न्याय को प्रेरित करने के लिए आस्था समुदायों और धार्मिक संस्थानों के सामूहिक प्रभाव का उपयोग करने का प्रयास करती है। दस्तावेज 2030 तक पृथ्वी के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कुछ प्रमुख तत्वों के रूप में एकता, साझा जिम्मेदारी और भाईचारे पर प्रकाश डालता है। धार्मिक नेताओं ने भी जलवायु परिवर्तन से प्रभावित समुदायों के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की। COP28 में विभिन्न आदिवासी धर्मों और परंपराओं के प्रतिनिधि, धार्मिक विद्वान, शिक्षाविद, महिला संगठनों के प्रतिनिधि, युवा लोग, नागर समाज, व्यापारिक नेता और पर्यावरण नीति निर्माता गण दुनिया में जो हो रहा है उस पर अपना दुख व्यक्त करने के लिए अबू धाबी में एकत्र हुए। उधर इसराइल ने तीसरे दिन रविवार को भी गाजा पर नए सिरे से बमबारी जारी रखी है। पिछले 48 घंटों से इजरायली युद्धक विमान पूरे गाजा पट्टी पर व्यापक हवाई हमले कर रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कहना है कि बहुत से फिलिस्तीनी पहले से ही मारे जा चुके हैं, जिसमें विनाशकारी मानवीय पीड़ा भी शामिल है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।